नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं, मुश्किल से जो घबरा जाए, विघ्नों से जो कतरा जाए, कौन कहेगा उसे योद्धा जो तनिक सी हवा में उड़ जाए। वास्तव में योद्धा तो हर बात का सामना करता है, और आप सब वीर हैं, योद्धा हैं, जो मुश्किलों में घबराते नहीं बल्कि हिम्मत रख के उनका सामना करते हैं। आप समस्याओं से ये कह दें कि समस्या तुम बड़ी नहीं हो, लेकिन तुमसे बड़ा भगवान हमारे साथ है, जिसे अब हमने जान लिया है, और साथ ही एक बहुत बड़ा समाधान परिवार हमारे साथ है। इसलिए समस्याओं, अब तुम आओगे भी तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब हम शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ऐसे ही प्रतिभाव आपसे प्राप्त होते रहते हैं, जिसे सुनकर हम बेहद आनंदित होते रहते हैं, और आप जानते हैं कि हमेशा हमें समस्या से समाधान की ओर ले चलने के लिए हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
भ्राता जी। एक बहुत अच्छी बात है, यदि समस्याओं को देखते हैं तब तो वो बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि भगवान को देखते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो समस्याओं से घबराना छूट जाता है, और एक एक कहें अलौकिक सी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम सहज ही समस्याओं को पार कर लेते
बिल्कुल
हैं।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा, मनुष्य सचमुच ही बहुत बहादुर है
जी,
वो वीर है, लेकिन बाह्य शत्रुओं से लड़ने से भी अधिक बहादुरी आंतरिक शत्रुओं से लड़ने में है। ये शत्रु हमें कमजोर करते हैं, जैसे भाई ये शत्रु भी कमजोर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है मनुष्य का आंतरिक शत्रु, और वो हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, बदले की भावना, दूसरे को गिराना, दूसरे को कष्ट देना। आज मनुष्य को यही भूल गया है कि ये तुम्हारे आंतरिक शत्रु हैं। वो दूसरों से बदला लेकर प्रसन्न होता है, पर वो ये भूल जाता है कि उसने अपने अंदर एक शत्रु को पाल रखा है, जो उसकी शक्तियों को, उसकी शांति को, उसकी खुशी को अंदर ही अंदर खाता जाएगा। अपने आंतरिक शत्रुओं को पहचान कर उन पे विजय प्राप्त करना सचमुच सबसे बड़ी विजय है, और जो मनुष्य ऐसी विजय प्राप्त कर लेता है वो तो समस्याओं को, चैलेंजेज को चैलेंज कर देता है कि आ जाओ, बस हम अग्नि की तरह, जैसे अग्नि में कोई भी चीज पड़ेगी नष्ट हो जाएगी, तुम आ जाओ, हमने योग की अग्नि जलाई है, इस अग्नि में जलकर तुम सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तो वास्तव में अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, और सचमुच मनुष्य को यदि ये अवेयरनेस हो जाए, जिसको हम ईश्वरीय नशा कहते हैं, नारायणी नशा कहते हैं, भगवान मेरे साथ है, आखिर वो मेरा पिता है, वो मुझे साथ दे रहा है, उसने मुझे साथ देने का वायदा किया है। बस ऐसा ना हो कि समस्याओं में हम इतने उलझ जाएं कि ये भी भूल जाएं कि सर्वशक्तिमान हमें साथ दे रहा है। इतनी सावधानी, इतनी एक गुड कॉन्शियसनेस हमें अपनी बनाए रखनी है, इसको धैर्य चित्त अवस्था भी कहेंगे, क्योंकि शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, हमें उन्हें एक्टिवेट करना होता है, और ये फीलिंग्स हमारी शक्तियों को एक्टिवेट करेंगी और ये समस्याएं
दूर हो जाएंगी। लेकिन भ्राता जी, इसके लिए भी लगातार अपने आप को याद दिलाते रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप अचानक ही कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। वैसे ही यदि हमने अचानक समस्याएं हमारे सामने आ गए और हमें अभ्यास ही नहीं है उस परमेश्वर को याद करने की, या ये स्मृति ही नहीं है कि हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस समय घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए लगातार शायद अपने आप को आत्म जागृति दिलाने की और साथ ही उसे कनेक्ट होने के,
इसलिए हम सबको कहना चाह रहे हैं, ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है, हर धर्म के प्रत्येक मनुष्य को इसकी आज आवश्यकता है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए, राजयोग मेडिटेशन केवल हिंदू धर्म वालों के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे मुस्लिम धर्म से, चाहे हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न सेक्ट्स से वो संबंधित हो। देखिए, रोज हर मनुष्य को सवेरे अपने को समय देना ही चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं कर रहे हैं वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के इस सफर में कई परीक्षाएं तो हर मनुष्य को देनी ही है, आज नहीं तो कल। किसी को छोटे से ही देनी शुरू हो जाती है, कोई युवा काल में परीक्षाओं से गुजरता है, कोई अंत में बहुत परीक्षाओं से गुजरता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी के लिए रोज थोड़ा समय, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट अर्ली मॉर्निंग में देने ही चाहिए। जैसे सभी धर्मों में प्राय ये परंपरा है कि सवेरे वो कुछ ना कुछ भगवान की तरफ, चाहे उसको प्रेयर कहें, इबादत कहें, चाहे कोई अपनी चर्च में जाते हैं, चाहे कोई भिन्न भिन्न तरह की मेडिटेशन, पूजा, भक्ति, पाठ करते हैं, ताकि सवेरे हमारे विचार थोड़े शुद्ध हो जाएं, हमारे अंदर विशुद्ध वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएं, इसकी बहुत जरूरत है। तो रोज सवेरे हम इस तरह अपनी चेतना को जागृत अवश्य किया करें। आई एम ए सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं रूह हूं, ये बॉडी अलग है, मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट हूं। जैसा ये बॉडी है ऐसे मैंने अनेक लिए हैं, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर तो बहुत क्वालिटीज हैं, जीवन के इस सफर को मुझे एंजॉय करना है। और कितनी सुंदर ये प्रकृति है, कितना सुंदर ये संसार है, इस संसार के नाटक में कितने एक्टर्स पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, भगवान की रचना कितनी सुंदर है, हम भगवान के बच्चे हैं, उसने हमें अपनी शक्तियां, क्वालिटी, प्योरिटी देकर इस संसार में पार्ट प्ले करने के लिए भेजा है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं, हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम परीक्षाओं के लिए तैयार हैं, मैं अपने जीवन को एंजॉय करूंगा, मैं किसी भी बात, छोटी बात को बड़ा करके नहीं देखूंगा, बातें तो जीवन में आएंगी लेकिन मेरे साथ तो भगवान है। इस तरह के विचारों से सवेरे के टाइम को एंजॉय करें तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता हो और उससे पहले तैयारी कर लेता हूं। लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें कुछ करना है। पहले तलवारों से युद्ध होता था तो सवेरे सवेरे थोड़ा तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर लेते थे ताकि एनर्जेटिक हो जाएं। तो इस तरह जीवन की यात्रा के इस परीक्षाओं के दौर में हम बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते, सवेरे उठे कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, सवेरे उठे टीवी खोल ली, कोई लक्ष्य तो होता नहीं, क्या करें। तो आज मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन हो गया है ना, उसे पता नहीं है, उसे ऐसी एजुकेशन नहीं है कि वो सवेरे उठ के क्या करे। इसलिए कल अगर कोई निराशा थी वो कंटिन्यू हो गई उठते ही, कल कोई टेंशन वाली बात सामने थी उठते ही वो कंटिन्यू हो गई, कल कोई समस्या का बुरा चिंतन करके सोए थे उठते ही वो प्रारंभ हो गया। तो एक निगेटिविटी से हम अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं तो डाउनफॉल हमारा होता ही जाएगा, रात तक हमारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को इस एजुकेशन की परम आवश्यकता है कि सवेरे उठकर 15 मिनट कम से कम हम क्या क्या करें, और ये वास्तव में समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम तरीका होगा।
बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। एक तो ये कि युद्ध क्षेत्र में हमेशा ही तैयार होके जाते हैं और हम शुरुआत ही अपने दिन की यदि ऐसे करें अच्छे विचारों से, सुंदर विचारों से, निश्चित रूप से सारे दिन कोई भी समस्या आएगी तो सहज हो जाएगा। दूसरी बहुत सुंदर बात लगी मुझे भ्राता जी कि हम कंटिन्यू ना करें, जो भी परेशानी हम लेकर के आए हैं सारे दिन अपने कार्य क्षेत्र से, शायद दूसरे दिन भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं और धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता चला जाता है और शायद यही कारण उदासी, निराशा, डिप्रेशन का बनता चला जा रहा है लगता है। तो जिस दिन की जो बात है, फाइल है, उसको उसी दिन पूरी करके हम दूसरे दिन एक नई शुरुआत करें तो जीवन शायद बहुत सुंदर हो जाएगा।
यही हो रहा है कि मनुष्य अपनी फाइल को क्लोज करना जानता नहीं है। अब कोई टेंशन उसके पास कल थी, आज वो उठा है, फिर उसे याद आया, तो उसके पास साधन क्या है कि चलो भाई टीवी खोल लेते हैं, इंटरनेट पे कुछ देख लेते हैं। अगर वो अपने मन को डाइवर्ट करना भी चाहता है तो उसके पास ये साधन है और इससे पुनः उसको निगेटिविटी मिलती है, निगेटिव एनर्जी उसको मिलती है, तो उसकी फाइल क्लोज होने की बजाय रीओपन होने लगती है और इससे समस्याओं का बोझ बढ़ता जाता है और ये मनुष्य को पतन की ओर ले चलता है। इसलिए उसे ये एजुकेशन होनी चाहिए कि सवेरे वो आत्मचिंतन कैसे करें। इस संसार के सभी लोग अगर सवेरे 15 मिनट, और मैं कहूं जिसके पास ज्यादा कुछ ऐसी बातें हैं, आधा घंटा उठते ही अपने को देने लगे, थोड़ा जल्दी भी उठें, ये नहीं 12-1-2 बजे सो रहे और 10 बजे तक फिर दिन में सोएंगे, थोड़ा ऐसा प्लान कर लें कि सूर्योदय से पूर्व 6 बजे तक, कोई 5 बजे, जो राजयोग का अच्छा अभ्यास करते हैं 4 बजे उठें और इस प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें
जी।
अपने जीवन की ब्यूटी को निहारें जरा, अपने को ऑब्जर्व करें, अपने को पहचाने, कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ अच्छे सॉन्ग सुन लें, सॉन्ग कोई फिल्मी सॉन्ग की हम बात नहीं करते, जैसे हमारे पास स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बहुत सारे हैं जिनको सुनने से ही मन आनंद से भर जाता है, जिनको सुनने से मन प्रभु प्रेम में मग्न होने लगता है, जिनको सुनने से समस्याओं के समाधान मिलते हैं। उनमें शब्द इतने सुंदर हैं कि वो एक फिलोसॉफी लिए हुए हैं, हमारा एक एक गीत एक एक फिलोसॉफी लिए हुए है। तो हम भी उनको सुनते हैं तो बिल्कुल सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। ऐसे सवेरे के समय को यदि मनुष्य व्यतीत करेगा तो उसकी पिछली फाइल क्लोज होने लगेंगी और वो अपने को एनर्जेटिक फील करेगा। और सच तो ये है कि उसे जो बातें बहुत बड़ी लग रही हैं वो छोटी लगने लगेगी। वो सोचेगा जो चीज बीत गई है, चलो कैसी बुरी थी, बिल्कुल एकदम खराब थी, अपमानित करने वाली थी, हमको उसने बदनाम कर दिया, हमारे संबंधों को कड़वाहट से भर दिया, ये सब भी था, ओवर हो गया। अब नई नई चीजें, नया चैप्टर लाइफ का हम बिगिन करते हैं। तो इस तरह के विचार उसको एक फाइल क्लोज करके नई प्रारंभ करने की प्रेरणा देंगे। ये अवश्य सबको करना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आज की एक प्रेरणा आपने दी है प्रताप जी, कि रोज की फाइल रोज कंप्लीट करें, उसे आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि वो यदि आगे बढ़ता रहेगा तो समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। और शुरुआत हमारे दिन की बहुत सुंदर होनी चाहिए, और हमेशा हम चर्चा करते आ रहे हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि शुरुआत बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि सुबह उठते ही भगवान के दीदार हो जाएं तो फिर क्या कहने, सारा दिन तो आनंद में ही बीतेगा।
बिल्कुल, राजयोग तो है ही ये कि उठते ही प्रभु मिलन। राजयोग परमात्मा की ओर जाने का मार्ग नहीं है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि राजयोग अर्थात प्रभु मिलन। तो सवेरे उठते ही तो हम अपने परम पिता को ही गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे भारत में अपने बच्चे अपने डैडी को माँ बाप को गुड मॉर्निंग करेंगे या पैर छुएंगे, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस उनसे लेंगे। हम तो गुड मॉर्निंग करते हैं अपने परम पिता को और उसके गुड वाइब्रेशंस, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका बहुत अच्छा आशीर्वाद, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं। तो सवेरे पहला ही क्षण एनर्जेटिक होता है, उठते ही प्रभु मिलन, ये राजयोग है।
बहुत सुंदर प्रताप जी, कुछ मेल्स जो अब हमारे पास आए हुए हैं मैं आपको उनकी ओर ले चलता हूँ। ये हैं सिमरन संधू जी, और कहती हैं, ओम शांति, मैं 1 साल से एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसी के साथ कैसा बिहेव करूँ, और मैं अपने डर को छिपा भी नहीं पाती। मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये डर रही है। तो ये जो मेरे अंदर डर का भाव है, चिंता का भाव है, इससे मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ, कृपया कुछ समाधान बताएं।
बहुत एक विकराल समस्या हम इसको कहेंगे, एंजाइटी, उससे जुड़ा हुआ भय, और यही फिर बदलता है डिप्रेशन और टेंशन में और मनुष्य को दिनों दिन कमजोर करता है। इससे शारीरिक बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं। ऐसा ही एक फोन कॉल आज मुझे भी आया था, वो बहन भी अपनी सुनाई जा रही थी, मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी।
वैसे होता ही है कि जब व्यक्ति कोई परेशान होता है तो अपनी सारी बातें
तो मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम अपनी सारी बात सुना लो, तो जो बात पहले सुना ली थी फिर सारी वही रिपीट की। अरे मैंने कहा ये तो आपने मुझे बता दी थी कि नहीं मुझे इनका समाधान चाहिए, फिर बोलना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा फिर और सुना लो, कुछ सुनाना है, तो तीसरी बार भी वही सुनाई। तो देखिए मनुष्य के अंदर ये एक इच्छा रहती है ना कि मुझे समाधान मिल जाए, यही बिल्कुल यही समस्या उसकी थी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। उसको डर की जगह क्रोध आता है बार बार, इसमें मनुष्य चिड़चिड़ा भी हो जाता है, फिर जब अच्छी नींद नहीं आती तो शरीर भी टूटा टूटा रहता है, डिप्रेशन का मनुष्य शिकार हो जाता है। देखिए इसका समाधान है अपने को खुशी में लाना, पहली चीज। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं पर जो कर्म फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं, और विश्वास की बात भी अलग करें जो कर्म फिलोसॉफी को जानते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हजारों साल से बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी आ रही हैं, हमने उनको कहीं भी तोड़ा नहीं है, उस चेन को हमने कट ऑफ नहीं किया है, वो सब लगातार हमारे साथ कंटिन्यू होकर चलती आ रही हैं। तो उसके कारण मनुष्य की खुशी नष्ट हो गई है। किसी ने आज मुझे एक बहुत अच्छा समाचार सुनाया, वो दो युवक मेरे से मिलने ही आए, तो देखिए ये युवक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस में, बहुत अच्छी पढ़ाई में, अचानक रात को मुझे जैसे कोई जकड़ लेता है और कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब, और मैं फिर शिव बाबा को याद करता हूँ, थोड़ी देर में वो हट जाता है। तो आखिर मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, मैंने उससे पूछा भाई तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो कि मेरा मर्डर किया गया है। तो मैंने उसे पूछा, मैंने थोड़ा ही किया है, मैं तो किसी का मर्डर नहीं किया, तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया, छोटे भाई ने। अभी उसके सामने तुरंत एक छाया सी आने लगी दूसरी, तो वो उसके समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है। मैंने बता दिया उसको कि देखो जो आत्मा तुमको परेशान करने आई है, पिछले जन्म में तुम्हारे इस भाई ने, इसका पिछला जन्म था और वो भी तब था, पूर्व जन्म में इसने उसका मर्डर कर दिया, उसने देख लिया है यहाँ है, तो वो तुम पर आ गया, उस पर किसी कारण वो नहीं पहुंच पाया है, तो डर इसको बहुत लग रहा था। तो मैंने ये बात बताई, मैंने उसको तो विधि बताई कुछ, लेकिन कंटिन्यू रहता है बहुत कुछ चीजें। हम ये ना सोचे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया और हम कोर्ट से भी बरी हो गए, बच गए, तो हम बच गए।
वो कहते हैं ना कि इस न्यायालय से भले बच जाओ, ऊपर वाले के न्यायालय से नहीं।
ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं कि यहाँ से लोग पैसा वैसा ले दे के बच जाते हैं और फिर वो कंटिन्यू होता है अगले जन्मों में। तो एंग्जाइटीज का यही एक बहुत बड़ा कारण है, डर का यही एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल जिसके अंदर डर है, या तो उसकी मृत्यु इस तरह से हुई है कि मरने के समय वो आत्मा बहुत भयभीत हुई है, मान लो किसी को आग में डाल दिया गया, तो आग में उसको मरने में 10 मिनट लगे, तो ये 10 मिनट उसके 10 साल के बराबर हो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में भय समा गया है। एक ये कारण होता है। दूसरा, पाप मनुष्य को भयभीत करता है, ये बात भी सभी को जाननी चाहिए। जिसने पाप बहुत कर लिए उसके अंदर अब किसी न किसी तरह का भय व्याप्त होता जा रहा है। तो मैं इनको कहूंगा कि इनको अपनी खुशी को बढ़ाना है बहुत ज्यादा, खुशी में रहने के कुछ संकल्प भी नहीं करने हैं। खुशी टीवी से इन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी इनके जो मनोभाव हैं, जो इनको कुछ चाहिए टीवी वो इनको नहीं देगी, उसके विपरीत टीवी से इनको मिलेगा, इसलिए इनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो इनको चाहिए कुछ खुशी के संकल्प, इनको अपने को जोड़ना होगा अपने परमपिता से, उसकी सुंदर अनुभूति रियलाइजेशन करनी होगी, इनको अपने बारे में बहुत कुछ जानना होगा, मैं तो भगवान की संतान हूं, अपने चित्त को शांत करना होगा। तो मेडिटेशन इनको चित्त शांत करने की विधि सिखाएगा। पहला काम इन्हें ये करना है, सवेरे उठते ही, जैसे हम बहुत अच्छी एक विधि सबको सिखा रहे हैं और इसके सुंदर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन का, हमारी मनोस्थिति का, जो सर्कमस्टांसेज हमारे सामने आ रहे हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। तो सवेरे उठते ही, जैसा मैंने कहा, अपने को समय देंगे, इनको एक विशेष काम करना सवेरे उठते ही। अगर वो काम इनसे न हो तो ये लिखें, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। 108 बार लिखें धीरे धीरे, भले इनको इसमें 15-20 मिनट लगे, ये अपने को ये टाइम दे, इससे इनको शक्तियां मिलेंगी और जो सबकॉन्शियस माइंड में भय है, अब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा यू आर फियरलेस, तो सबकॉन्शियस माइंड भी इनको मदद करेगा और इससे इनके जीवन में थोड़ी शांति आएगी, खुशी बढ़ेगी और इनकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। सोने की बात जो है और डिप्रेशन की बात जो है, उसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं मनुष्य के पुण्य कर्म, और अगर ये राजयोग सीख लें तो भगवान को रोज भोग लगाना, वो भी एक बहुत सुंदर विधि है। अर्ली मॉर्निंग लगाएं तो बहुत अच्छा, हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर ये उसकी विधि सीख सकती हैं, या वहां हमारे बहनों से मदद लेकर उनको इस कार्य में सहयोगी बना सकती हैं। फिर रात को बैठकर इनको शांत में लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूं, 108 बार। इनसे आत्मा से गुड एनर्जी ब्रेन को जाएगी। देखिए जादू नहीं है, इससे क्या होता है, आत्मा यहां रहती है, आत्मा ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, हम जो कुछ सोचते हैं उसकी गुड और बैड एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती है। अब इन्होंने सोचना शुरू किया, मैं एक महान आत्मा हूं, ऐसे व्यक्ति को बोलने से विचार भटक जाएंगे फटाफट, तो ये लिख रही हैं लगातार, मैं एक महान आत्मा हूं, तो ब्रेन को गुड एनर्जी ये सप्लाई कर रही है, और गुड एनर्जी जाते जाते ब्रेन में जो कहीं ब्लॉकेज हो गए हैं, कोई चीजें नष्ट हो गई हैं, वो रीजेनरेट हो जाएंगी, ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे और बहुत तेजी से इनका डिप्रेशन दूर होगा, इनको अच्छी नींद आने लगेगी और इनके दिन बहुत सुख से बीतने लगेंगे।
बिल्कुल, बहुत सुंदर अभ्यास आपने दिए हैं भ्राता जी। मुझे लगता है कि सिमरन जी निश्चित रूप से अपने इस चिंता से और अपने इस भय से, जो वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अनावश्यक रूप से जो चिंता उन्हें सता रही है, इन अभ्यासों से निश्चित रूप से वो
बिल्कुल मुक्त हो पाएंगे। इनको समय देना ही चाहिए अपने लिए, क्योंकि इनकी जो ये मनोस्थिति है ये इनके पूरे परिवार पर बैड इफेक्ट डाल रही है। इससे बच्चे बिल्कुल मां का ना प्यार प्राप्त कर रहे हैं, सहमे सहमे से रहेंगे, हमारी मां को क्या हो गया है, इनके घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। तो बच्चों का विकास, चाहे बॉडीली प्रोग्रेस हो, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे इंटेलेक्चुअली, ब्रेन वाइज, ये विकास उनका रुक जाता है। इसलिए इनको बिल्कुल दृढ़तापूर्वक राजयोग मेडिटेशन सीख लेना चाहिए और 21 दिन अपने घर में जाके ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सच्चे दिल से करनी चाहिए। 21 दिन केवल ये समर्पित कर दें अपने जीवन के, तो अगले 21 साल कम से कम इनके सुखपूर्वक बीत जाएंगे।
दादा जी, एक जो फोन कॉल हमारे पास आया था, ये फोन कॉल हमारे पास आया था जम्मू से, और ये सुमन जी ने किया था, और ये कहती हैं कि मेरे पति आर्मी में हैं और अभी वो बॉर्डर पे नियुक्त हैं, और अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी की स्थिति है, और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, और मुझे लगता है डर का भाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं बॉर्डर पे हो चुकी हैं, तो मन में एक आशंका बनी रहती है कि कहीं मेरे पति के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो आप कृपया समाधान बताएं कि मैं इस डर से भी कैसे मुक्त हूं, मैं कुछ समय से राजयोग का अभ्यास भी कर रही हूं।
बिल्कुल, इनके पति बहादुर हैं जो बॉर्डर पर हैं, देश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं, इनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अदरवाइज इनके डर के वाइब्रेशन उनको पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनको वीक बनाएंगे।
फिर भी भ्राता जी, ह्यूमन नेचर है कि हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्रिय यदि ऐसे स्थान पे रहता है तो मन में थोड़ा सा भाव तो आ ही जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए।
बिल्कुल, और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो बहुत बहादुर हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो पांचों सैनिक तब असावधान हो, उस पोजीशन में ना हो, बहुत अलर्ट न रहे हो, उनके साथ ये हादसा हो गया। हमारी तो उनके साथ सहानुभूति है, वो देश के बहादुर जवान थे और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो निश्चित रूप से जैसा कि देश में माहौल बना है, उनका शायद ये बलिदान कुछ विशेष काम आएगा, चमत्कारिक रूप लेगा। हमारे सारे देश को इस बलिदान ने जगा दिया है और एक बच्चे बच्चे के मन पर यह है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो इनको बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने पति को शुभ भावनाएं देनी चाहिए और इनको देना चाहिए एक विशेष संकल्प। जब ये मेडिटेशन कर ही रही हैं तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और मुझसे निकली हुई शक्तियों की किरणें उसको जा रही हैं, वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। ये संकल्प उनको दें और उनको भी सिखा दें कि वो ये अभ्यास किया करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो उनकी शक्ति के साथ, उनकी शस्त्रों की शक्ति के साथ, सर्वशक्तिवान की शक्ति भी उनके साथ काम करेगी और वो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। ये क्यों मरेंगे, 10 को मारेंगे ना।
बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे विचार रखें और सुंदर ये अभ्यास करते रहें, तो निश्चित रूप से इनके मन का भी भय दूर होगा। और जैसे आपने कहा कि यदि डर और भय से ये विचार कर रही हैं, तो ये डर और भय कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस के रूप में उन तक भी जाएगा, तो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरह से नहीं निभा पाएंगे। तो ये भी सुंदर अभ्यास करें सुमन जी, और साथ ही अच्छे वाइब्रेशन अपने पति तक पहुंचाएं। भ्राता जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, जहां तक रही सेना की बात, तो सेना के हमारे जवान तो वैसे भी बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, और बहादुरी की गाथा से तो अटा पड़ा है, भरा पड़ा है हमारा इतिहास। इसीलिए न केवल सुमन जी की बात है, लेकिन अन्य जिनके भी पति, जिनके भी भाई, जिनके भी अन्य पिता, वो सब भी जो बॉर्डर पे हैं या फिर आर्मी में हैं, उनके लिए आप डर का भाव अपने मन में न रखें, क्योंकि डर का भाव यदि आपके मन में होगा, चिंता का भाव यदि आपके मन में होगा, तो यही नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक भी जाएंगे। लेकिन आप अपने मन में बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, जैसे भ्राता जी ने कहा, समर्थ विचार रखें कि हम सब सर्वशक्तिवान की संतान है और वैसे भी भारत तो परमात्मा की जन्मभूमि है। इसकी रक्षा न केवल हमारे सैनिक कर रहे हैं बल्कि इसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा भी करते हैं। तो जब ये भाव ये विचार हमारे मन में होगा तो हम सब सुरक्षित भी रहेंगे निश्चिंत भी रहेंगे। तो आप सब सुरक्षित रहें निश्चिंत रहें आनंदित रहें यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।